ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 1 मेरे पीछे दोहराइए। श्री शुक उवाच ततः प्राचेतस अकस्यायाम् अनुनीत स्वयंभुवा षष्टिम् संजनयामास द्रुहित्रः पितृवत्सलः। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेत सा असिक्याम् अनुनीत स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास द्रुहित्र पितृवत्सलः। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसः असिक्याम अनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दोहित्र पितृवत्सलः। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसः असिक्याम अनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दोहित्र पितृवत्सला। श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा ततः इस घटना के बाद प्राचेतसः दक्ष असिक्याम अक्षनी नामक पत्नी से अनुनीतः शांत किए गए स्वयंभुवा श्री ब्रह्मा के द्वारा षष्टिम 60 संजनयामास उत्पन्न किया दोहित्र कन्याए पितृवत्सला अपने पिता की परम प्यारी। अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन तदंतर श्री ब्रह्मा की प्रार्थना पर प्रजापति दक्ष ने जिन्हें प्राचेतस कहा जाता है अपनी पत्नी अक्षनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक प्यार करती थीं। तात्पर्य पढ़ता हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने अनेक पुत्रों की हानि सह लेने पर दक्ष को नारद मुनि के प्रति की गई अज्ञता पर पश्चाताप हुआ। तब श्री ब्रह्मा दक्ष के पास गए और उनको संतान उत्पन्न करने की सलाह दी। इस बार दक्ष सावधान थे, अतः उन्होंने कन्याएं ही उत्पन्न की जिससे नारद उन्हें विरक्त न बना सके। स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है, उन्हें तो अपने पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि पति मुक्ति का पात्र है तो उसकी पत्नी को स्वयं में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि शास्त्रों का कथन है, पत्नी अपने पति के पवित्र कार्यों में हिस्सा बटाने वाली होती है। अतः स्त्री को चाहिए कि वे अपने पति की आज्ञाकारिणी बने, तभी बिना किसी भिन्न प्रयास के वह अपने पति के लाभ में हिस्सा बटा सकती है। नया अध्याय आरंभ हो रहा है, दक्ष की कन्याओं का वंश। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, रंतर ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रजापति दक्ष ने, जिन्हें प्राचेतस कहा जाता है, अपनी पत्नी अक्षनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक प्यार करती थीं। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक प्यार करती थीं। ऐसा है कि आई रिमेम्बर मैं जब छोटा हुआ करता था, व्हेन आई वाज अबाउट इन स्कूल टाइम, तो मेरे फादर के पास ना एक हैंड रिटन कुछ पेपर्स थे विच ग्रेजुअली लॉस्ट। मकान बने, शिफ्ट किया, यहां से वहां बाएं दाएं हुए, तो उसमें खो गया वो। उसमें उन्होंने जो है, मैंने पढ़ा उसको एक बार, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने उसको एक दो बार पढ़ा। तो मैं स्कूल में था, मुझे उसका कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था, बट सिंस पेपर्स वर देयर सो आई जस्ट वेंट थ्रू इट। और उसकी एक मेमोरी जो है ना, वो मेरे माइंड में आज भी फिक्स्ड है कि पहले एक ना एक कॉपिंग पेंसिल आया करती थी, ब्लू पर्पल कलर की, याद होगा किसी को, उसको कॉपिंग पेंसिल कहा करते, ब्लैक पेंसिल आती है ना, ऐसे कॉपिंग पेंसिल ब्लू पर्पल कलर की आया करती थी एक। उस पर्पल कलर की पेंसिल के साथ लिखे हुए थे व्हाइट पेपर के ऊपर सारे, इट वॉज ए सेट ऑफ अबाउट 15-20 पेजेस। उसमें गर्भाधान संस्कार का पूरा प्रोफॉर्मा लिखा हुआ था कि पति को किस समय पत्नी से संयोग करने से, किस घड़ी में, किस लक्षण में, किस स्टार में, कौन सा जो प्रहर है दिन का, किस हिसाब से, और स्त्री के कौन से दिन होने चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन करके लिखा हुआ था कि नाउ यू गेट ए बॉय और यू गेट ए गर्ल। वो मेरे को दोबारा ना नेट पे मिला है, ना मैं किसी ग्रंथ में उसको ढूंढ पाया हूं, बट उस प्रोसेस था पूरा, इट वॉज ए कंप्लीट प्रोसेस रिटर्न इन दैट। आई स्टिल रिमेम्बर, आज मैं जब भक्ति में आया हूं तो सोचता हूं कागज कहीं उस जमाने में संभाल के रखे होते तो आज प्रीचिंग में काम में आते, इट वुड हैव बीन यूजफुल टू मी। पर उस वक्त तो मकान बनाए, शिफ्ट किए, कई कागज गए, कई आए, बहुत सारी चीजें खो जाती हैं, तो वी लॉस्ट दोज पेपर्स। तो मेरी एक फेंट सी मेमोरी है कि यस आई रेड दोज पेपर्स, एंड पेपर्स में क्लियर लिखा हुआ है कि आप अपनी इच्छा से स्त्री के द्वारा पुत्र या पुत्री की प्राप्ति कर सकते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन अब भी है, ये अलग बात है कि हम उन शास्त्रों में उस वर्णन को ढूंढ नहीं पाए बिकॉज ऑफ अवर इनकैपेबिलिटी। हम इतने कैपेबल नहीं है, इतने हमारे भी ज्ञानवान नहीं है कि हम पूरे वेदों के अंदर ढूंढ पाए। वेदों के अंदर जो श्लोक हैं, जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो 50-100 श्लोक पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद तय बोल जाएगी, अरे यार बड़ा बोर कर रहे हैं, छोड़ो परे, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? श्लोक जो है एक वर्ड से लेके 58 वर्ड्स तक का श्लोक है। तो एक श्लोक में जैसे आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसमें जो है 33 टोटल जो है अक्षर है, अक्षर नापेंगे ना, 32.5 या 33 अक्षरों का संयोग से श्लोक बनता है, परंतु वहां पे 58 वर्ड्स का श्लोक है। 58 वर्ड्स, मैं अक्षरों की बात नहीं कर रहा, 58 वर्ड्स तक के श्लोक है, और बड़ा ही वास्ट नॉलेज है उसके अंदर। वेदों में जाते हैं तो अगर हम उसको रफली कैलकुलेट करके चलें तो 1,00,000 श्लोकों के अंदर से 80,000 श्लोक जो हैं वो कर्मकांड के हैं, 16,000 श्लोक जो है वो ज्ञान कांड के हैं, और 4,000 श्लोक जो है उपासना कांड के, जो भक्ति कांड कहते हैं। इट इज सच ए वास्ट नॉलेज। तो अभी हमारे पास भगवद गीता नहीं लोगों से पढ़ी गई 700 श्लोक की, तो वेदों को क्या पढ़ेंगे, कहां से ढूंढेंगे सब कुछ, इट्स सो डिफिकल्ट। पुराणों को पढ़ना, भागवतम को पढ़ना, इट्स नॉट ए इजी जॉब, इट्स नॉट ए इजी थिंग। आसान जिंदगी बीत जाती है, समझ में नहीं आती है या पढ़ा नहीं जाता। आज यहां कितने साल से भागवतम पढ़ रहे हैं, 10 साल से तो मैं ही लेक्चर दे रहा हूं, 11 साल हो गए अभी तक। छठा मैंने तीसरे स्कंद से आरंभ किया था, आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैंने लेक्चर देने शुरू किए थे पंजाबी बाग में भागवतम पे, तो तीसरा स्कंद चल रहा था। आज 11 साल के बाद या 12 साल के बाद छठा स्कंद में आए अभी 18 का वॉल्यूम है इसके, 12 स्कंद कब तक पूर्ण हो गए, हम फना हो जाएंगे। इट्स सो वास्ट नॉलेज, इतना वास्ट नॉलेज है कि हम उसको जो है अपना अपनी बुद्धि में समेट नहीं सकते। कई बार हमसे प्रश्न करते हैं, ओ जी क्या है इतनी सी तो किताब है तो क्या है, बोले पढ़ के भैया सुना तो सही है रहा। कई बार हम कहते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, बड़ा ढूंढेंगे। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, पुराणों के अंदर टोटल आज की तारीख में जो प्रकाशित श्लोक हैं वो 4 लाख हैं, टोटल श्लोक थे 1 करोड़। 96 लाख उपलब्ध नहीं है जो कि दूसरे लोकों में है या लुप्त प्राय हो गए। हमारे पास अगर हम डिवीजन करेंगे तो 18 पुराणों के अंदर मिला के 4 लाख श्लोक हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट किसके अंदर है, सबसे ज्यादा श्लोक किसके अंदर है, स्कंद पुराण में 55,000। अगर हम ये लेके चलें, आज हम देखो भागवतम का 1 श्लोक करते हैं, ज्यादा करेंगे तो आज हम 3 कर लेंगे या 4 कर लेंगे, क्योंकि आज के श्लोक में कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ नाम ही पढ़ने हैं तो हमें 3-4 कर लेंगे। पर एवरेज अगर आप जो है 10 श्लोक लेके चलो, मैं 1 की भी बात नहीं करता, 4 की भी बात नहीं करता, 10 श्लोक लेके चलो अगर आप, तो 1 महीने में कितने होते हैं, कितने हुए, 30 गुना 10, 1 साल में कितने हुए, 3650। 10 साल में कितने हुए, 10 साल में 36,500। 100 साल में कितने हुए, 3,65,000। 4 लाख फिर भी पूरे नहीं होते, 10 श्लोक रोज करने पे, पर कंडीशन अप्लाई लिखा होता है ना नीचे कार्ड में या सेल के नीचे लिखा होता है कंडीशन अप्लाई, स्टार बना होता है। स्टार ये है कि पैदा होते ही उआ नहीं करनी 10 श्लोक पढ़ने, पैदा होते ही, क्योंकि 100 साल के नहीं ना, हमने 100 ईयर्स काउंट किए हमने, तो पैदा होने का दिन पहला दिन है ना, उस दिन उआ नहीं करनी है, 10 श्लोक पढ़ने, तब भी नहीं पूरे होते। इट इज सच ए वास्ट नॉलेज। तो उस वास्ट नॉलेज के अंदर हमें ये एक्सेप्ट करके चलना है कि हमारी बुद्धि अभी इतनी परिष्कृत नहीं हुई कि हम ये ढूंढ पाए कि भाई लड़कियां कैसे पैदा होंगी या लड़के कैसे पैदा होंगे। हां, आज की तारीख में साइंस ने एक हमें चांस दिया है कि आप एक्स एंड वाई को सेपरेट करके आप या तो लड़का ले सकते हैं या लड़की ले सकते हैं, बट विच इज बैंड बाय सुप्रीम कोर्ट। जेन्युइनली इट इज ए ब्यूटिफुल एस्पेक्ट कि बैन कर दिया है। इट इज ए वंडरफुल थिंग, सुप्रीम कोर्ट इज डन, गवर्नमेंट इज डन, कि नहीं तो क्या है, लड़के लड़की होंगे, लड़कियां समाज में दिखाई नहीं देंगी। मनुस्मृति के अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि स्त्री को विवाह से पहले अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के बाद पति के संरक्षण में रहना चाहिए और पति के बाद पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। स्थिति बदल गई है, पुत्र ही नहीं है, सिर्फ पुत्री है तो क्या करेगा, स्त्री क्या करेगी, दिक्कत आ गई नहीं। अगर आप इस पर्पट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें जो आज का समाज है उसकी एक बिल्कुल झलक मिलती है। मैं एज ए काउंसिलर एंड एज ए डॉक्टर दोनों बातों को समन्वय करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए, मिक्स करते हुए और प्लस अध्यात्म, तीनों चीजों को लेके आपको जो है कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बहुत मरीज आते हैं टेंशन में, चिंताएं, परेशानियां, कष्ट। एक ही बेटा है और वो भी बीवी के साथ अलग रहता है, बूढ़े माँ बाप अलग रहते हैं, एक ही घर में एक छत पे रहता है, हम नीचे रहते हैं, किचन अलग अलग है, साथ नहीं रहता। पत्नी आई, पति को दूर ले गई, हम अकेले रह गए हैं, वो अलग घर में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, वो गुड़गांव में रहते हैं। इट्स वेरी कॉमन अफेयर, वेरी कॉमन। माता रोते हुए आती है, उसको टेंशन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ पड़ा है, शुगर की बीमारी हुई पड़ी है, जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, चला फिरा जा नहीं रहा है, वो अकेली रह रही है, बेटा अलग रह रहा है। उस कंडीशन के अंदर माता जो है उस एज में जाके एट द एज ऑफ 60-65 प्रार्थना करती है हमारे पास आके, इससे अच्छा तो मेरी लड़की है, कम से कम मेरा ध्यान तो रखती है। पिता को प्यारी लिखा है ना, स्पष्ट लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक प्यार करती थी, ये नहीं लिखा कि पिता कन्याओं को अत्यधिक प्यार करते थे। सी द डिफरेंस ऑफ वर्ड्स, शब्द क्या इस्तेमाल किए हैं कि सभी कन्याएं, यहां पिता से आप माता पिता लीजिएगा, मींस पेरेंट्स लीजिएगा, नॉट ओनली फादर, पेरेंट्स को लेकर चलिएगा, कि सभी कन्याएं अपने माता पिता को प्यार करती थी। आज की तारीख में मैं आपको अपने बिल्कुल अनुभव से बता रहा हूं, टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि एक ही घर के अंदर माता पिता, मेरे पास एक बहुत अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आया था, मैंने उसको फॉरवर्ड भी किया था, उसमें स्पष्ट बड़ा अच्छा लिखा है, वानप्रस्थ की एज में एट द एज ऑफ 50-55 यू डोंट हैव टू बी ए बेबी सीटर। बेबी सीटर समझते हैं कि पति पत्नी दोनों काम पे जा रहे हैं और माता पिता बच्चा संभाल रहे हैं, सारे जीवन पैसा जमा किया और बेटे को दे दिया, या उसके बच्चे की देखरेख हो रही है, अगर बच्चा स्कूल छोड़ने जाना है तो दादा दादी जाएंगे, या स्कूल से बस स्टॉप पे लेने जाना है तो दादा दादी जाएंगे, घर में सारा दिन देखना है तो दादा दादी देखेंगे, और माता पिता दोनों घूमने जाएंगे तब भी बच्चे को दादा दादी देखेंगे, दे बिकम बेबी सिटर्स। वो मेरी नौकरी, हमारे यहां प्रभु जी आया करते थे एक हमारे साथ प्रोग्राम में, सानेज इन बेंगलोर, खुद वो यहीं रहते हैं दिल्ली में, बच्चा बीमार हो गया है, रूठ के बेटा बेटी दोनों, बेटा और बहू दोनों जो है दिल्ली से नौकरी ट्रांसफर करा के बेंगलोर चले गए, 350 गज की कोठी है खाली, माता पिता दोनों अकेले उसमें रह रहे हैं, और बेटा और बहू दोनों गुड़गांव में काम करते थे, वहां से नौकरी छोड़ के दोनों जो है बेंगलोर चले गए। अब बेंगलोर जाने के बाद क्या है, वहां से एक फोन आता है, मम्मी काका बड़ा बीमार हो गया है, मैंने छुट्टी नहीं मिल रही, तुसी आ जाओ ना, मिस माता पिता को छोड़ गए हो, यू नॉट केयरिंग फॉर देम, और परंतु आपके बच्चे की केयर के लिए फिर आपको माता पिता चाहिए, फिर आपको माता पिता चाहिए, फिर आप जो है उनको कॉल कर रहे हो कि मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा, 20,000 तो हम किराया देते हैं मकान का, बिजली पानी टेलीफोन अलग से है, कार का खर्चा अलग है, वो सारा खर्चा करने के बाद जो है अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो मेरे पति की जॉब से घर नहीं चलेगा, और पति दोनों काम करेंगे तो बच्चे कौन देखेगा, इसे आपकी बड़ी जरूरत है। यहां दक्ष प्रजापति ने अब देखा कि दो बार पुत्र, ये अलग बात है कि दक्ष प्रजापति जो है ग्रह मेदी थे, उनको जो है पुत्रों का लॉस असहनीय था, क्योंकि ग्रह मेदी को अपने पति पत्नी और बच्चों में ही आनंद लेने की आदत है। शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कों ने ठीक रास्ता अख्तियार किया कि दे वेंट एंड बिकम ब्रह्मचारी, जब भगवान की सेवा में चले गए, नारद जी ने समझाया। तो इस श्लोक के अंदर जो है दो बातें उभर के आती हैं। पहली बात उभर के आती है जो प्रभुपाद जी परपट के अंदर लिख रहे हैं कि दक्ष ने नारद मुनि को अपने प्रति की गई अज्ञता पर पश्चाताप हुआ। अब पश्चाताप क्या है, व्हाट डज पश्चाताप मीन्स, पश्चाताप का अर्थ क्या है? दो शब्द आते हैं, एक पश्चाताप एक प्रायश्चित। पश्चाताप क्या होता है और प्रायश्चित क्या होता है? फीलिंग ऑफ गिल्ट। पश्चाताप का मतलब है आप पश्चात आप जो है ताप मतलब आप कष्ट में हो, दुख में हो कि आप मैंने जो कार्य किया है वो गलत था, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। मैं मतलब मुझे उसका एक फीलिंग आ रही है कि मुझसे गलत कार्य हुआ है, फीलिंग ऑफ गिल्ट है देर कि मैंने गलत कार्य किया है। आप उसके ऊपर जो है अपने आप की प्रताड़ना कर रहे हैं, अपने आप की प्रताड़ना कर रहे हैं, यस मुझसे गलत काम हुआ है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप क्रिएटेड ब्लंडर, आप कमिटेड गुनाह मैंने किया है, मैंने पाप किया है, मैंने गलत कार्य किया है। दैट इज दैट फील इज पश्चाताप, द फील ऑफ गिल्ट इज पश्चाताप। अब उस फील ऑफ गिल्ट को रिमूव करने के लिए यू बेग सॉरी, यू बेग पार्डन, और आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिससे उसका फल जो है वो निष्फल हो जाए, उसका फल खत्म हो जाए। दैट इज प्रायश्चित। प्रायश्चित इज एक्शन, कार्य है। जैसे हम कहते हैं आई हैव सेड सम ऑड वर्ड्स टू यू, मैंने आपके प्रति कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया है। अब शब्दों का प्रयोग करने के बाद मुझे महसूस होता है, मुझे फील होता है, हाँ मैंने गलत काम कर दिया है, मुझे पाद सेवक प्रभु के प्रति अब शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, मैंने ब्लंडर किया है, मैंने गुनाह कर दिया, मैंने पाप का कार्य किया है, मैंने अपराध किया है, फील ऑफ अपराध, मुझे फील आने लगा था। पश्चाताप क्या है? आई गो टू हिम, दंडवत करूं, क्षमा मांगूं और कहूं कि मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, हाउ कैन आई मेक यू हैप्पी, वो प्रायश्चित। तो आई गो, आई फील सॉरी, आई बेग पार्डन, और फिर उसके लिए बेग पार्डन करते हुए, सॉरी फील करते हुए, जो भी कार्य मैं समझता हूं इनको प्रसन्न कर सकता है वो कार्य करूं, वो प्रायश्चित। तो यहां पर जो कह रहे हैं अपने अनेक पुत्रों की हानि सह लेने पर दक्ष को नारद मुनि के प्रति की गई अज्ञता पर पश्चाताप हुआ। अब इसमें देखिए, इस सेंटेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उधर के आता है। कई बार हमको साधु व्यक्ति जो हमसे सीनियर हैं, मे बी ही इज नॉट गुरु, जो सीनियर हैं, जिनका एक अनुभव है भक्ति के अंदर, जिनका एक अनुभव है कृष्ण भावनामृत में, वो हमें चेस्टाइज कर देते हैं, हमें समझाते हैं, समझाने में कुछ डांट भी शामिल हो जाती है, कुछ मतलब थोड़ा सा क्रोध भी हो जाता है, या थोड़ा ऐसा हो जाता है, नहीं तो गलत कर रहा है, गलत ठीक काम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब टोन जो है हमारी थोड़ी सी चेस्टाइजिंग हो जाती है। तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिस इज फॉर माई गुड, मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, ये मेरे एक दुश्मन नहीं है, इज नॉट माई एनिमी, इनको मेरे से ईर्ष्या नहीं है, ये मेरे वैरी नहीं है, ये मेरे भले के लिए मुझे चेस्टाइज कर रहे हैं। अगर वो करने वाला गुरु है तो उसकी बातों को तो फूल समझ के स्वीकार करना चाहिए, इस ही शॉवरिंग फ्लावर्स ऑन मी। ऐसा हम लोग जो है बचपन में पढ़ा करते थे कि एक कबीर साहब ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाई, निंदा जो आपसे निंदा करता है, जो आपकी बुराई करता है, उसको अपने पास रखिएगा, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे, वरना इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मीन्स यू मस्ट कीप ए क्रिटिसाइजर अलोंग विद यू, जो आपको क्रिटिसाइज कर सके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर किसी सीनियर भक्त ने, शिक्षा गुरु ने, दीक्षा गुरु ने, वैष्णव आचार्यों ने किसी कारणवश हमारे किसी कार्यकलाप के अंतर्गत हमको चेस्टाइज कर दिया है, हमको डांट रूपी समझ दी है, समझाया है डांट के थोड़ा सा, तो हमें उसको सह जाना चाहिए, हमें उसके प्रति रोष प्रकट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट फील कि रेसिप्रोकेट कर दें, रोष प्रकट कर दें, बुराई करनी शुरू कर दें, अजी ये तो ऐसे हैं, बोलते रहते हैं, जिसको मर्जी देखे डांट देते हैं, उनका दिमाग खराब हो गया, बड़ा ईगो है उनके अंदर, अपने आप को बड़े बहुत बड़े समझते हैं, मैं भी तो भक्ति कर रहा हूं, मैं बेवकूफ हूं क्या, मैं ही फूल, मैं भी तो भक्ति कर रहा हूं, मुझे भी तो पता है, मैं भी तो पढ़ता हूं, मैं भी तो सुनता हूं, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या, मींस हाई हमारी अज्ञता है, इस अज्ञता के ऊपर हमको जो है पश्चाताप होना चाहिए और हमें प्रायश्चित करना चाहिए। नारद मुनि एक बहुत ही एग्जाल्टेड डिवोटी हैं, वो अगर जो है दक्ष प्रजापति से कुछ कह रहे हैं या उन्होंने उसके प्रति को ऐसा कार्य किया है जैसे कि 10,000 फिर 1,000 सबको भगवत भक्ति के मार्ग में भेज दिया, तो दक्ष प्रजापति को उसके ऊपर एंगर नहीं दिखाना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति जो है कुछ श्राप दे दिया है, श्राप नहीं देना चाहिए। पता नहीं रियलाइज कि मुझसे कष्ट हुआ है, मैंने गलत कार्य किया है। ऐसा गलत कार्य हम आज भी करते हैं, श्राप देने की स्थिति में तो नहीं है परंतु निंदा तो करते हैं ना, और निंदा करना क्या है? अपराध। उस अपराध से छुटकारा नहीं है, वैष्णव अपराध से छुटकारा नहीं है, नाम के प्रति अपराध से छुटकारा नहीं है। तो ये जो है परपट हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाता है कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा रोल क्या होना चाहिए। अब उन्होंने जो है 60 कन्याएं उत्पन्न करी और 60 की 60 कन्याएं अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं। आज के युग में 60 तो पैदा करना बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल। पर आप फिर भी देखेंगे समाज के अंदर एक कन्या हो, मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है। मैं बीमार हुई तो मेरी बहू मुझे देखने नहीं आई, मां के सिरदर्द हुआ तो भाग के चली गई देखने के लिए, पीपल कमेंट से सास को ईर्ष्या होती है अपनी बहू से कि मैं तकलीफ में हुई तो मुझे देखने नहीं आई, वो अलग रह रही है ना, अलग रह रही है, है? और मेरी मां बीमार हुई तो फट से भाग के चली गई, नौकरी से सीधा ही मां के घर चली गई, पहले घर भी नहीं आई, और मैं घर में रहती हूं, एक ही फ्लोर में ऊपर नीचे रहते हैं, तब भी मुझे देखने नहीं आई। पुत्रियां आज की तारीख में हो या पहले भी हो, यह शाश्वत सत्य है कि माता पिता के प्रति पुत्री का प्यार ज्यादा होता है, पुत्र का प्यार कम होता है। ये बात शास्त्रों में कही गई है, आज कलयुग में हम इसका साक्षात प्रभाव देख रहे हैं, साक्षात प्रभाव है इसका, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज की डेट में ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप आगे जाके पढ़ेंगे कि दक्ष और दक्ष प्रजापति की जो पुत्रियां हुई हैं उन्होंने उनका विवाह किसके साथ किया है, किस किस को उन्होंने दी हैं, कैसे कैसे उन्होंने जो है उसका डिवीजन किया है, और फिर उनसे आगे जो है किस तरीके से, और पूरी पेडिग्री फुल बिग लिस्ट पढ़ेंगे ना इसके अंदर, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ज्ञान मिलता जाएगा कि द बिग लिस्ट, नाम पढ़ पढ़ के याद करने बड़े मुश्किल हैं, सो डिफिकल्ट। तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि चाहे संतान हो, हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं, पुत्र के प्रति मोह होता है और मोह के प्रति हम पुत्र की अनर्गल बातें, गलत बातें उसको स्वीकार करते जाते हैं, और वो जो स्वीकरोक्ति है, वो जो हमारा स्वीकार किए हुए एक्शंस हैं, वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब हमारे सामने उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, पहले हम पैम्पर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 40 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में मैंने बहुत लोगों को कष्ट में देखा है, मतलब एक ही घर में पुत्र भी है पुत्री भी है तो पुत्र के प्रति उसकी डिजायर्स, उसकी डिमांड्स ज्यादा फुलफिल की जाती हैं, पुत्री की कम की जाती है। एक बेटा और बेटी के अंदर आपस में शुरू से ही रिफ्ट पैदा कर दी जाती है, एक डिफ्रेंशिएशन, एक डिमार्केशन लाइन खड़ी कर जाती है कि तुम बेटा है और तू बेटी है, और वो बेटी के प्रति जो है इतना कुछ सहने के बावजूद फिर भी बेटी जो है माता पिता के प्रति सॉफ्ट होती है और बेटा माता पिता के प्रति हार्ड होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी। अब आप देखें कभी समाज में निकल के पूछिएगा आपको पता लग जाएगा। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जहां मैंने देखा है आड़ोस पड़ोस के अंदर। आज आप एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, हर कॉलोनी में बिल्डर्स ने फ्लैट्स बना दिए हैं, हु आर द बायर्स, बाहर कौन है? यंग कपल्स जो अपने घर से माता पिता को छोड़ के आए, हु हैव लेफ्ट देयर पेरेंट्स। छोटा सा फ्लैट है, 50 गज का, 100 गज का, 150 गज का, 200 गज का, उसमें रह रहे हैं अकेले। क्या कहते हैं, वी बिलोंग टू ए न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियस बिल्कुल जैसे सेल के अंदर छोटा सा गोल न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। किसी भी एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और नीचे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस इज अ स्मॉल फैमिली, इट्स ए न्यूक्लियर फैमिली। हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, मैं, मेरे माता पिता और मेरी बहन, चार लोग रहते हैं। भाई की शादी हुई है, वो अलग हो गया है, बहन अपने घर चली गई है, मैं अपने माता पिता के साथ हूं। और साथ में लिखा है न्यूक्लियर फैमिली, आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा इसकी शादी हो गई, ये भी अलग चला जाएगा। हमें भागवतम के अंदर हर प्रकार का ज्ञान है, हर प्रकार का। आप कभी उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, प्रॉपरली समझने का प्रयास करेंगे, यू विल रियलाइज कि आज के समाज के अंदर जो कुछ हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, साक्षात है, वो सारी की सारी बातें हजारों वर्ष पूर्व भागवतम में लिखी जा चुकी हैं। दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड, दे हैव बीन सेड। आप एक सर्वे करा लीजिए ना, जैसे इलेक्शन सर्वे होता है, आप जो है एक पेरेंट्स का और बच्चों का सर्वे करा लीजिएगा, एंड यू विल रियलाइज व्हाट इज द आउटकम। आउटकम इज व्हाट भागवतम सेज। जो भागवतम कहती है वही आउटकम निकल के आएगा बाहर। तो कई बार जो है मतलब पेरेंट्स की व्यथा देख के आंखें भर आती हैं कि समाज के अंदर कितनी अव्यवस्था फैल रही है। एक दूसरे के सुख में हम साथी नहीं, एक दूसरे के दुख में साथी नहीं। कष्ट क्या है कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों है। दिस इज द डिफरेंस। कोई फैमिली अपने भाई को बर्दाश्त करके तैयार नहीं है, सगे भाई को बर्दाश्त करके तैयार नहीं है। दोनों भाइयों के बीच के अंदर जो है अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग बच्चे पड़े हैं, अलग अलग बड़े हुए हैं, बच्चों की शादी हो गई है, बच्चे छोड़ के चले गए हैं, बुढ़ापे में दोनों भाई अकेले रह गए हैं, फिर भी एक साथ नहीं रह सकते, फिर भी एक साथ नहीं रह सकते। ओल्ड एज, चिल्ड्रन हैव गॉन टू देयर हाउसेस, बच्चे अपने घर जा चुके हैं, लड़कियां ब्याह के चले गई, लड़का बहू लेके अलग चला गया, माता पिता अकेले बैठे हुए हैं, परंतु दो भाई दोनों बीवियों अपनी बीवियों के साथ एक घर में नहीं रह सकते। वी हैव ए न्यूक्लियर फैमिली, हमारी फैमिली न्यूक्लियर है। तो यहां पर जो है अगर आप समझेंगे स्पष्ट, तो यहां पे कहा गया है उनमें कि पति को मुक्ति का पात्र है तो पत्नी को स्वयं में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहां अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट डस पत्नी एंड धर्म पत्नी में क्या फर्क है। जब आप कहते हो कि मेरी पत्नी है, आप बोलते हो मेरी धर्म पत्नी है, तो दोनों में क्या है, बट वर्ड्स में क्या भेद है? भाई धर्म क्यों लगाया था? पत्नी में और धर्म पत्नी में क्या फर्क है? पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी का मतलब है मैरिड, और धर्म पत्नी का मतलब है धर्म से मैरिड। नहीं भाई, आपने अग्नि के चारों तरफ सात सप्तपति लेके सात चक्कर लगा के उसको पत्नी स्वीकार किया है, तो धर्म से आपकी पत्नी है। अग्नि देवता ने आपको जो है बिल्कुल एक मतलब एविडेंस हो गया ना, अग्नि बिकम्स एन एविडेंस, प्रूफ, सबूत है। आप हो गए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिव इन रिलेशनशिप, कोर्ट मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं। चलो मान लो कोर्ट मैरिज की भी बात कर ली, तब भी आप कहते हो जी मेरी धर्म पत्नी है ये। आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। वो भगवान का प्रेम केवल आपको नहीं चाहिए, भगवान का प्रेम पत्नी को भी चाहिए। रीजन, इस भौतिक संसार में हम पति पत्नी का रोल निभा रहे हैं, पर टेक्निकली पति एक ही है, वो है कृष्ण। और हम सब, चाहे हम मेल हैं चाहे फीमेल्स हैं, सब उनकी पत्नियां हैं। हम भोक्त हैं, वो भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, भोक्ता वही है। तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। उस भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में जो मेरी सहयोगी है, वही पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। और जो उस प्रेम को प्राप्त करने में मेरा सहयोग नहीं करती, मेरे को सपोर्ट नहीं करती, वो धर्म से मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर आरूढ़ नहीं। परसों मैं सन नगर में संडे को लेक्चर दे रहा था, तो एक माताजी आई मेरे पास। अब मैं उसको रेसिप्रोकेट कर रहा हूं, उल्टा उल्टा बता रहा हूं कि धर्म से पति है कि नहीं। पति भी तो धर्म से होना चाहिए कि पत्नी को धर्म के मार्ग में लगा सके, कि जिम्मेदारी सिर्फ धर्म पत्नी की है। टेक्निकली धर्म पति भी होना चाहिए। स्त्री कहे मेरा धर्म पति है, नॉट से माय पति है। यहां भी कई बार कई माताओं ने मेरे से सवाल किया, प्रभु जी बताओ कैसे किया जाए। ये मेरा पति जो है वो मेरे को मंदिर आने से मना नहीं करता, पहले तो मुझे आने ही नहीं देता था। चलो हौले 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 हौले, अब मुझे मंदिर आने से मना नहीं करता, परंतु खुद नहीं आता। कुछ माताओं का प्रश्न होता है, प्रभु जी वो मुझे ना दरवाजे पे छोड़ के चले जाते हैं, अंदर नहीं आते। कुछ माताएं आती हैं, कहती हैं प्रभु जी ऐसा है कि वो ना मेरे को तो छोड़ देते हैं कथा सुनने के लिए, आप दर्शन करके चले जाते हैं, कथा में नहीं आते। कथा में आए ऐसा कुछ जुगाड़ करिए आप, मैं उनको आपसे मिलवाना चाहती हूं। नास्तिक है, कथा नहीं सुनते वो। पहले तो मुझे आने नहीं देते थे, आने देते थे तो बाहर छोड़ देते थे, बाहर छोड़ने के बाद अंदर आना शुरू हो गए। अब अंदर आने के बाद जो है दर्शन करने शुरू कर दिए हैं, दर्शन करके दो मिनट में निकल जाते हैं। मुझे कहते हैं फोन कर दियो, मिस्ड कॉल मार दियो, मैं तेरे को आके ले जाऊंगा। मैं उन्हें मिस्ड कॉल मारती हूं तो मुझे आके ले जाते हैं। आप प्लीज कुछ ऐसा करो कि वो अंदर कथा सुन ले बैठ के, कथा में बड़ा मजा आता। वो पत्नी जो है पति को धर्म के मार्ग पे लगाने की कोशिश कर रही है, परंतु पति अभी धर्मपति नहीं बना। प्रभु जी हैं हमारे यहां पे, कहते हैं मेरे घर में बड़ा झगड़ा है, मेरी पत्नी जो है किसी दूसरे कल्ट को मानती है, मैं इस कल्ट को मानता हूं। मैं कहता हूं भोग लगाऊंगा, कहती भोग नहीं लगेगा, मैं खाऊंगी। और पति जो है सीधे रास्ते चल रहा है, पत्नी सीधे रास्ते नहीं है। कहती मेरे को बड़ा मुश्किल है, मैं बिजनेस देखूं काम धंधा देखूं कि मैं एक कटोरी दाल बनाऊं, मुझे एक ही कटोरी खानी होती, मुझे एक कटोरी भी नहीं देती। मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल है। कहती काहे का भोग लगा रहे, भगवान सब जगह लग गया अपने आप, भगवान सर्वव्यापक है, भोग अपने आप सबने खा लिया, उन्होंने बना तो खा लिया, तो गरम गरम वो तो पतीले में भी खा जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर। परंतु जो है यहां पर बड़ी स्पष्ट बात लिखी है कि अगर पति जो है धर्म के मार्ग में चल रहा है, मुक्ति का पात्र है, तो पत्नी को स्वयं में मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, आधा हिस्सा कहा गया पति का। पति जो भी कार्य करता है उसका आधा फल पत्नी को प्राप्त होता है, चाहे वो कार्य धर्म का हो चाहे कार्य अधर्म का हो, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, चाहे कर्म हो अकर्म हो या विकर्म हो, जो भी कार्य करेगा पत्नी को उसका आधा फल स्वयं में प्राप्त हो जाएगा। और जब अर्धांगिनी है तो मुक्ति का मिलेगा, पाप का नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, तो माताजी को उसका जो है, माताजी को अपना लाभ प्राप्त हो रहा है, परंतु पति का जो पत्नी को धर्म धारण किया है भैया, वो तो निरीक्षक आएगा ही आएगा ना, उसको कैसे चुपा लोगे आप, ये सेंटेंस को कैसे रिफूट कर दोगे आप। ये तो कह रहा हूं सिचुएशन बहुत टेढ़ी है, इट्स नॉट ए इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, आसान कार्य नहीं है। पत्नी अगर भक्ति कर रही है तो पति को मुक्ति के मार्ग में नहीं ले जा सकती, पति भक्ति कर रहा है तो पत्नी को मुक्ति। इसी से पत्नियां रोती हैं कि प्रभु जी इसको कम से कम कथा तो सुनाओ, कुछ तो आगे लगाओ, ये तो गेट से ही चला जाता है। मैं भक्ति कर रही हूं गेट से चला जाता है तो होगा क्या, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। भगवान अंदर हृदय में बैठे प्रेरणा दे रहे हैं पत्नी को कि भाई तू अपने पति को भक्ति के मार्ग में लगा, अल्टीमेटली तेरे पति भक्ति के मार्ग में जाएगा, तभी तेरी भक्ति सफल हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी। इट्स अ वेरी टेक्निकल सिचुएशन। बहुत प्रभुपाद जी का परपट बिल्कुल स्पष्ट है कि पति मुक्ति का मात्र है तो पत्नी को स्वयं में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसमें से जो है पति मुक्ति का पात्र नहीं है तो पत्नी का क्या होगा? तभी उसे मुक्ति मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी। ये बहुत ही टेढ़ी सिचुएशन है। इसीलिए बिगिनिंग के अंदर आप जो है जब कॉलेज स्टूडेंट्स के पास जाते हो, आई आस्क ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुरली कृष्ण प्रभु हमारे ब्रह्मचारी प्रचारक हैं, आप लड़कियों के कॉलेज में जाते हो या लड़कों के कॉलेज में जाते हो? क्यों जाते हो लड़कियों के कॉलेज में, क्यों नहीं जाते? बिकॉज अगर पति लड़के ने अल्टीमेटली पति बनना है ना, अगर पति जो है मुक्ति का पात्र बनेगा तो पत्नी को तो प्राप्त हो ही जाएगी। इसलिए लड़कों में ज्यादा प्रीचिंग होती है। यू डोंट गो टू गर्ल्स कॉलेज, यू गो टू बॉयज कॉलेज, क्योंकि आप उनको पतियों को जो है जो आने वाले कल में पति बनने वाले हैं उनको आप जो है प्रीच करके जो है भगवत मार्ग में लगाएंगे। तो पत्नी, पति कहे मुझे तो क्लब जाना है, तो जाकर जुआ खेलना, शराब पीनी। पत्नी तो शराब नहीं पीती ना, बहुत कम पीती है, पीती हैं आज की तारीख में। दे ड्रिंक। मुझे याद है मैं इसी संडे को या सैटरडे को मेरा कहीं लेक्चर था। आई सॉ टू यंग गर्ल्स, जीन्स वीन्स पहनी हुई, सब पहनी हुई, बड़ी खूब जा रही, और दोनों के हाथ मंदिर के पास, मंदिर के बाहर थी या पार्किंग में थी, कहां थी आई डोंट रिमेम्बर, मैंने बहुत जगह लेक्चर दिए। आई सॉ देम बोथ ऑफ देम स्मोकिंग, और मंदिर के सामने से निकल रहे, बड़े मंदिर के सामने, वो जो गोविंदा रेस्टोरेंट है उसके सामने जो रोड है उसके ऊपर ऊपर से उतर के आ रही है। शायद मंदिर में दर्शन करके आई होगी, तब सिगरेट नहीं पी होगी, और बाहर आते ही अपना दोनों लड़कियां सिगरेट पी रही, पीती हैं, बट मेजॉरिटी से शराब लड़कियां पीती हैं कि लड़के पीते हैं? मेजॉरिटी के अंदर नॉन वेज खाना लड़के खाते हैं कि लड़कियां खाती? सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको लड़कियां लेती हैं कि लड़के लेते हैं? तो किसमें इंप्रूवमेंट चाहिए? वो धर्म का पति बन भाई, तो सीधा रास्ता ले, पत्नी को तो लिबरेशन मिल ही जाएगी। एंड दैट इज व्हाई पीपल गो टू बॉयज कॉलेज, नॉट टू गर्ल्स कॉलेज। एम आई राइट? लड़कियों के कॉलेज में नहीं जाते प्रीच करने के लिए, लड़कों के कॉलेज में जाते हैं। कि लड़के अगर सुधर जाएंगे तो लड़कियों में तो स्वाभाविक भक्ति है, आप कभी आजमा के देखना। लेडीज के अंदर, माताओं के अंदर जो है भक्ति का एक स्वाभाविक, जरा सा उनको हल्का सा इशारा मिलेगा ना तो भक्ति करने लगे, आरती लेके जाना, लड़का बाहर खड़ेगा लड़की बेचारी आरती कर रही है। तो वट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इम्प्रूव द मेल काउंटर पार्ट्स, पुरुषों को सुधारना है। अगर वो भक्ति के मार्ग पे आ जाएंगे, प्रभुपाद ने, प्रभुपाद की मूवमेंट के अंदर इस्कॉन यूथ फेडरेशन आई थी, ये अलग बात है कि हम लोगों ने गर्ल्स फेडरेशन बना दी, प्रभुपाद ने कहीं नहीं बनाया, कहीं प्रीच नहीं किया। बेसिकली यूथ फेडरेशन, यूथ काउंसिल्स रही हैं, यूथ काउंसिल रही है, यूथ फेडरेशन रही, यूथ मीन्स बॉयज। अगर पति जो है भक्ति के मार्ग पे आ जाएगा तो पत्नी को तो भक्ति के मार्ग ऑटोमेटिकली स्वीकार कर लेती है, बहुत रेयर है। अगर आप लेके चलोगे कि 100 अगर लेके चलते हो फैमिलीज, तो उसके अंदर अगर एक दो स्त्रियां ऐसी मिलेंगी जो कहेंगी मैं भक्ति के मार्ग पे नहीं हूं, पर 90 पुरुष मिलेंगे जो बोलेंगे भक्ति के मार्ग पे नहीं हूं, वो टालेंगे। तो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन एवरी टाउन एंड एवरी विलेज, हर गली हर घर ہر شہر، ہر نگر، ہر گاؤں، ہر کونا ہرے کرشن مہا منتر کا اچارن ہو، کتھا سنی جائے، کتھا پڑھی جائے، ٹھاکر جی کی سیوا میں سب لوگ لگیں، یہی جیون کا لکش ہے، یہی کرنا چاہیے۔ ہرے کرشن۔ اور کوئی پرشن پاد سیوک پربھو؟ ایسا ہے جب کوئی پرشن پوچھتا ہے نا تو لگتا ہے کہ اس نے بہت پڑھا ہے، اس کو دھیان پوروک سنا ہے، تبھی وہ پرشن پوچھ رہا ہے۔ جب وہ پرشن نہیں پوچھتا ہے نا، اس کا مطلب ہے ابھی اس نے پڑھا نہیں ہے یا سنا نہیں ہے، یا اسے سب کچھ آتا ہے، دونوں میں سے ایک ہی بات ہے۔ ہی از پرفیکٹ، ہی نوز ایوری تھنگ۔ اینی وے، شیل پروپاد کی۔ دکھائی دیے، کہاں سے؟